आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्या सागर मुनि महाराज की, हम सभी लोगों ने पिछले दिनों अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए इस दशलक्षण महापर्व के अवसर पर चार बातें सीखी हैं कि रोज जीवन में गुस्सा करने, क्रोध करने के मौके आते हैं, हमको एक आध मौके पर क्षमा भाव भी धारण करना चाहिए। यदि हम पूरी तरह से हर मौके पर क्षमा भाव धारण करें तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाते हैं तो एकाध मौके पर तो करके देखना चाहिए कि कैसा लगता है। हमने ये भी सोचा है पिछले दिनों कि कभी कभी हम अपने आसपास के वातावरण को लेकर के या अपने आसपास लोगों के व्यवहार को लेकर के कभी कभी कठोर हो जाते हैं और फिर हम बड़े कठोरता से पेश आते हैं। ये हमारा व्यवहार ठीक नहीं है। हमें दिन भर में एक मौके पर ऐसा भी करना चाहिए कि हमारी कोमलता, हमारी मृदुता बनी रहे और हम कठोर ना हो पाए। हमने ये भी अपने मन में विचार किया है कि ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है या कि हमारे मन का संस्कार इतना प्रबल हो जाता है कई बार कि पता नहीं क्या सोच करके और हम दूसरे को ठगने का मन बना लेते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि धोखा दे भी देते हैं दूसरे को और मन ही मन बड़े खुश होते हैं। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। दूसरे को अगर कभी धोखा देने का मन हो भी तो हम थोड़ा अपने को संभाल लेंगे और धोखा अगर हमारे हाथ से किसी को दिया गया है तो बाद में कम से कम प्रसन्नता अनुभव तो नहीं करेंगे, गिल्टी फील करेंगे और आगे कभी धोखा ना दूं ऐसा मन बनाएंगे, क्योंकि संस्कारवश कई बार मन में ऐसा भाव आ जाता है तो हम उसके बाद कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि प्रसन्नता महसूस ना करें दूसरे को धोखा दे करके, नहीं तो ये आदत और बढ़ती चली जाए और हमने अपनी सरलता को बनाए रखने का, अपनी ईमानदारी को बरकरार रखने का भी विचार किया है। और इतना ही नहीं, हमारे चारों तरफ बड़े आकर्षण हैं, पांचों इंद्रिय और मन को लुभाने वाली सैकड़ों चीजें हैं। हमारे मन में उन चीजों को लेकर के बहुत जल्दी लोभ जाग जाता है। अब हम क्या करें, लोग जागृत हो तो क्या करें, उन चीजों को जैसे अपन अपना बजट कम होने पर ग्रहण नहीं कर पाते हैं यह कि जैसे कोई चीज खाने का बहुत मन है लेकिन शरीर साथ नहीं देता, बीमारी है, डॉक्टर के कहने से उस चीज को छोड़ना पड़ता है, तो क्यों ना हम उसको अपने मन से ही निकाल दें और उसके प्रति अपने मन में लोभ न रखें, उस चीज को लेकर के अपने मन को विकृत न करें। जो चीज नहीं मिल पाई है उसके अभाव में हमारा मन संक्लेशित होता है, मलिन होता है, और जो चीज हमारे जीवन में मिल गई है उसका आनंद भी नहीं ले पाते हम। तो हमने तय किया है कि जो चीज हमको मिली है, हमने पहले पुण्य कमाया है, उससे हमें मनुष्य पर्याय मिली है, उसमें भी दो बातें धर्म की सुनने का सौभाग्य मिला है, और इतना ही नहीं उन धर्म की बातों के अनुसार अपने जीवन को बनाने का मन भी कई कई बार हुआ है, ये भी सौभाग्य है। इन चीजों पर तो हमें गर्व होना चाहिए, इन चीजों का तो हमें गौरव होना चाहिए, इतना तो मिला हमारे लिए। अगर एक आंख कमती मिलती तो कैसा लगता, दोनों मिली है, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए अपने को। ठीक है, आंख में लगाने का और बढ़िया गोल्डन वाला चश्मा नहीं मिला तो नहीं मिला, अब उनको मिला है तो ठीक है, अपनी तो आंख वैसे भी छोटे मोटे किसी चश्मे से काम चला लेंगे। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर हमने विचार किया है कि अपने मन को खराब नहीं करेंगे, अपने मन की प्रसन्नता को, अपने मन की निर्मलता को हम खंडित नहीं होने देंगे। अगर हमने इतनी बात अपने जीवन में धीरे धीरे शुरू कर दी तो सच्चाई इससे बड़ी और क्या है। जीवन उन्हीं का सच बनता है, वे ही सच को पा पाते हैं जो कषायों से मुक्त होकर के आत्मस्थ हो जाते हैं। सच को पाना, सच्चा होना और सच्चा बोलना, ये तीनों ही चीजें हमें अपने जीवन में और सीख लेनी चाहिए। सच को पाने का अर्थ तो बहुत सीधा सा है कि हम अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करें। सच्चाई संसार में इतनी ही है कि हम अपनी प्योरिटी को फील करें, हम अपनी निर्मलता को फील करें और उसमें ही लीन आत्मस्थ हो जाए, यही सच को पाना है। निर्विकार हो जाना ही सच को पाना है, और चारों कषायों के अभाव में जो हम अपनी आत्मा की शुद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं वास्तव में वही सच्चाई है। लेकिन उस सच को पाना इतना आसान थोड़ी है, सच को पाने के लिए तो सच का आचरण करना पड़ेगा, सच होना होगा, भीतर से सच्चा होना, और फिर जो भीतर से सच्चा हो जाता है उसके द्वारा जो भी बोला जाता है वो सब सच होता है। हमारा लक्ष्य सच को पाने का हो, हमारा संकल्प सच्चे होने का हो, और हम झूठ वचन से बचते रहें, यदि इतना हम पुरुषार्थ कर लें तो हमारे जीवन में बहुत ऊंचाई और अच्छाई धीरे धीरे करके आए बिना नहीं रहेगी। एक छोटी सी घटना है, एक पिता के चार बेटे थे, पिता का बहुत मन था कि वे सच को प्राप्त कर लें। वैसे तो आज माता पिता का मन यही होता है कि उनके बच्चे बहुत अच्छे बने और सच्चाई को जाने, लेकिन अपना अपना पुण्य पाप भी तो सबके साथ लगा हुआ है, किसी के चाहने अकेले से थोड़े ही कुछ होता। पिता ने तो बहुत चाहा कि चारों बेटे सत्य को पालें, और उन्होंने कहा भी कि जाओ जैसे बने और सच को पाकर के लौटना, मैं जब तक तुम्हारा यहां पर इंतजार करूंगा। अपन तो विदेश भेजते हैं कि पढ़ के लौटना, लेकिन कौन लौटता है। बहुत बड़ी बड़ी स्कूल में, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में अपन भेजते हैं बच्चों को, काहे के लिए भेजते हैं कि दो रोटी कमाने लायक विद्या सीखा, सत्य को प्राप्त करके लौटना। ऐसा तो मेरे ख्याल से आज कोई अपने बेटे को नहीं कहता होगा कि जाओ जीवन में और देखो, अपने अनुभव से जानो कि सच्चाई क्या है, उसको पाकर के लौटना। नहीं, सिर्फ दो रोटी और अपनी आजीविका चलाने के लिए थोड़ी बहुत विद्या सीख के आ जाओ, ताकि जरा ढंग से कार में घूमते हुए जीवन व्यतीत करो, और अच्छे डनलप पर सो, और कूलर में जीवन व्यतीत करना, बस यही सच्चाई है जीवन की। जिनके जीवन में इतना पा लेना ही सच को पा लेना है, उनसे तो अपन को कोई बात ही नहीं करनी है। अपने मन में भी ऐसा बात ऐसी ऐसा मन हो जावे तो ये सच्चाई, अगर सचमुच में ये सब सच्चाई होती तो आज तक अपन को मिल गई होती। सबके पास सब कुछ तो है, लेकिन इसके बाद भी क्या जीवन सच्चा हो पाया, क्या हमने सच्चाई को पा पाया है? बल्कि कुछ दिन के बाद ये सारी चीजें बेमानी मालूम पड़ने लगती हैं, व्यर्थ मालूम पड़ने। पिता ने भेजा कि सच को प्राप्त करके लौटना। एक निश्चित समय पर उन चारों ने तय किया कि 12 वर्ष तक अपन खोज करेंगे और वापस लौटेंगे और एक स्थान पर मिलेंगे और फिर पिता के साथ एक साथ चलेंगे। और ऐसा ही हुआ 12 वर्ष में। और लौटे, पिता तो बहुत अशक्त हो गए थे अपने बिस्तर पर लेटे हुए। जब उनको खबर मिली कि चारों बेटे लौट के आए हैं, बड़े खुश हुए कि इससे पहले कि जीवन पूरा हो बच्चों से पूछ लें कि उन्होंने सच को पा लिया है या नहीं पाया। पहले वाले बड़े बेटे से पूछा कि सच को पाया, तो उसने बहुत सारी गाथाएं और ऋचाएं ग्रंथों की सुना दी, जो सच के बारे में बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों ने लिखी थी, वो सब ऋचाएं और गाथाएं सुना दी। पिता को संतोष नहीं हुआ, दूसरे से इशारा किया कि क्या तुमने सच को पा लिया। उसने बहुत सारे सच्चाई के जो सूत्र थे उन सूत्रों को दोहरा दिया। पिता को उससे भी संतोष नहीं हुआ। तीसरे वाले ने तो विभिन्न धर्मों में जो सुभाषित थे, अच्छी अच्छी बातें थी, वो सब पिता को सुनाई सच के बारे में। पिता उससे भी संतुष्ट नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगा कि हमारा इनको जन्म देना व्यर्थ हो गया। 12 बरस तक मैं इंतजार करता रहा कि सच को पाकर के लौटेंगे, लेकिन ये तो सच के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं, सच को इन्हें प्राप्त नहीं किया। सच के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेने का नाम सच को पाना नहीं है। चौथे वाले बेटे की तरफ थोड़ी आशा भरी नजर से देखा तो फौरन उस चौथे वाले बेटे ने पिता के चरणों में झुक करके प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न भाव से बस पिता को एक दृष्टि भर करके देखा और अपनी आंख नीची कर ली। पिता बहुत प्रसन्न हुए, उठ करके उसे अपने गले लगाया और कहा कि मरने से पहले मुझे संतोष है कि मेरे एक बेटे ने सत्य को प्राप्त कर लिया। सत्य को प्राप्त करने के मायने इतना ही है कि हमारा जीवन अत्यंत शांत और राग द्वेष से रहित हो गया। ये प्रतीकात्मक घटना है। क्या हम ऐसा ही अपने जीवन में सच को पाने का लक्ष्य बना सकते हैं? हमें बनाना चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसी ही सच्चाई को, जो कि राग द्वेष से रहित है, जिसमें कि चारों कषायें नहीं है, और फिर हम जान रहे हैं सारे संसार को, वास्तव में तो वही सच को पा लेना है। लेकिन इस सच को पाने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, सच्चा होना पड़ेगा, भीतर से सच्चा होना। जिसका मन जितना सच्चा होगा उसका जीवन भी उतना ही सच्चा, जिसका व्यवहार जितना सच्चा होगा उसका जीवन उतना ही सच्चा होगा, और जिसकी वाणी में जितना सत्य होगा उसका जीवन ही उतना सच्चा। तो जीवन को सच्चा होने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि हम अपने मन को सच्चा बनाएं, और उसके लिए आचार्य भगवंतों ने 8 बातें लिखी हैं। सच्चाई को पाने के लिए जब हम सच्चा होने की तरफ कदम बढ़ाएं, तो पहला कदम है कि हम दूसरे को क्षति पहुंचती हो झूठ के कैडर में है। ये सिर्फ जैन आगम की, कहना चाहिए अपनी फिलॉसफी है सत्य के बारे में। दुनिया पूरी यही मानती है कि जैसा देखा वैसा का वैसा कह दो, जैसा सुना वैसा का वैसा कह दो, जैसा जाना वैसा का वैसा कह दो, इसको सत्य कहते हैं। लेकिन जैनाचार्य कहते हैं कि ये सब चीजें बाद में, पहले ये देख लेना कि स्वपर कल्याण की भावना से बोला जा रहा है या कि मन की कड़वाहट से और क्रोध लोभ भीरुत्व और हास्य इन चार से मिश्रित होकर के बोला। इन चार से मिश्रित यदि सच भी है, जैसा आपने देखा वैसा का वैसा बोला है, लेकिन क्रोध लोभ भीरुत्व और हास्य से मिश्रित होकर के इंसेंट मोटिव अगर आपका गड़बड़ है, तब फिर मोटिव गड़बड़ हो जाने से, भीतर के भाव गड़बड़ हो जाने से वो सत्य भी झूठ में परिवर्तित हो गया। सबसे पहले तो सत्य बोलना, लेकिन सत्य बोलने के बाद ध्यान रखना कि बोलने की जरूरत क्या पड़ी है, मकसद क्या है बोलने का, इंटेंशन क्या है आपके। आप बहुत सत्यवादी हैं लेकिन आप बोल क्यों रहे हैं ये सच, ये तो देख लेना भीतर टटोल करके। आप दूसरे को या अपने आप को, दोनों स्थितियों, दूसरे को अपन चोर तो नहीं कहते, लेकिन अपने को जो साहूकार साबित करने की बात है उससे भाव तो यही लगता है कि दूसरे को चोर साबित करना चाह रहे हैं। बहुत कठिन है ये मामला, इसको बहुत गौर से समझना पड़ेगा। भीतर के भावों को हम पहचाने कि हम मन में कितने सच्चे होकर के सच बोल रहे हैं। यदि मन में कहीं कोई दुराव है, मन में कहीं कोई क्रोध लोभ या भय, इस तरह की कोई कषायवश यदि हम बोल रहे हैं, तो मानिएगा वो सत्य के कैडर में नहीं आएगा, उससे दूसरे का हित नहीं होगा। ये तीन चीजें ध्यान में रखने की हैं। सच बोलना है, लेकिन ध्यान रखें अच्छे मन से बोलना है। कड़वे मन से सच बोला जाएगा तो वो सच भी झूठ में परिवर्तित हो जाएगा, और परिणाम का विचार कर लेना कि परिणाम क्या निकलेगा। आप बोल तो सच रहे, सच बोलना उद्देश्य सच बोलने का होना चाहिए, दूसरे के हित का होना चाहिए, और परिणाम यदि ठीक है, हम सच बोल रहे हैं, हमारा उद्देश्य भी बहुत अच्छा है, लेकिन परिणाम क्या निकलेगा, परिणाम खोटा निकले, एक प्लान पहले से एक आइडिया लग जाता है कि इसके बोलने से क्या होगा, तब रुक जाना आवश्यक नहीं है। आप जैसे सत्यवादी और भी बड़े हैं, क्या जरूरत है आपके सच बोलने की, चुप हो जाओ। हाँ, ऐसा लिखा हो, बड़ा कठिन लगता है ऐसा पढ़ने के बाद, लगता है कि इस तरह तो चुप रहना ही ज्यादा, इतना कठिन है सच बोलना भी, इतना कठिन है सच को पाना तो कठिन है ही, सच होना भी कठिन है, लेकिन सच बोलना भी बहुत कठिन। सापेक्ष बोलना, हमेशा किसी न किसी अपेक्षा से बोलना, और आचार्य भगवंतों ने तो इतनी बढ़िया बात लिखी है, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरें, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरें। इसमें सारी चीजें आ गई। ये छह ढाला में दौलत राम जी ने जैसे कि दो लाइनों में सारा कुछ भर दिया जितना अपन ने विचार किया। जग सुहित कर सब अहित हर, सबका जिसमें भला हो, किसी का भी बुरा ना। श्रुति सुखद, सुनने में भी ठीक जान पड़े। सब संशय हरे, किसी के मन में कोई डाउट ना हो सुनकर कि क्या कहना चाह रहे थे, और ऐसा लगे जैसे कि मुख चंद्र ते अमृत झरे। अपने वचन को हम क्या धीरे धीरे अभ्यास से ऐसा नहीं बना सकते, बना सकते। बोलना तो सबको पड़ता है, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा की मदद तो अपन को लेनी पड़ती, लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि इस भाषा के द्वारा भी अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं अपन, बोल करके भी। लेकिन इतने बैरियर पार करने के बाद तब वचन बोले जाएं, इतनी सब बातों का ध्यान रख के वचन बोले जाएं, तो वे वचन भी दूसरे और अपने दोनों के हित को करने में कारण बन सकते हैं। वचन का घाव सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाला मेरे ख्याल से। आप किसी को बहुत जोर से मारपीट कर दीजिएगा, वो दो चार दस दिन के बाद भूल जाएगा। अगर बहुत चोट पहुंच गई होगी तो वो चोट भी जो है दो चार आठ दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन आपने किसी के लिए मर्म दे दी, कोई वचन कह दिया है, तो जीवन भर वो उसके मन में सालता रहेगा, चुपता रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है वचन को संभाल करके बोलना। एक घटना आती है, किसान बहुत दुखी था, लकड़ी काटने जाना पड़ा उसको, खेतों में दाना नहीं होगा, जंगल में लकड़ी काटने गया था और सामना हो गया एक शेर से, बहुत प्रसिद्ध घटना, और शेर से सामना हो गया तो भागने भागने को हुआ, लेकिन शेर की कराह सुनकर के रुक गया, शेर के पैर में कांटा लग गया। शेर ने कोई आक्रमण नहीं किया उस पर, बल्कि बहुत करुणा पूर्वक बहुत दया से उस किसान को देखा, किसान का भय मिट गया जाकर के, और जब शेर ने अपना पंजा ऊपर उठा दिया तो उसमें से कांटा निकाल दिया और वापस लौटने लगा तो शेर ने कहा, कहानी का शेर तो कहेगा ही कहेगा। हाँ, कहानी का शेर है वो कहेगा, और मैं तो इस पर ऐसे लेता हूं कि अगर किसी के भीतर प्रेम हो तो उसकी भाषा सबके समझ में आएगी, और इन क्षणों में जबकि उसका कांटा निकाला था उसके भीतर किसान के प्रति बहुत प्रेम था, इसलिए शायद किसान को शेर की भाषा समझ में आ गई हो, भले ही शेर ने कैसे भी लैंग्वेज का यूज किया हो, सब समझते हैं। अपन किसी को जरा से कठोर आंखों से देख लो, सब समझ जाते हैं कि कैसे देख रहे हैं आप, कौन नहीं समझता है? आप प्यार से देख रहे हैं, आप दया से देख रहे हैं, आप क्रोध से वशीभूत होकर देख रहे हैं, आपने बोला कुछ भी नहीं है, ये जो लैंग्वेज है ना, ये भी बहुत झूठी होती है अपनी। हाँ, ये भी भाषा है एक, ये हमारे मन को प्रदर्शित कर देती है। इसलिए तो लिखा हुआ है कि जिसका मन सच्चा होगा उसके सारे एक्सप्रेशंस, उसकी वाणी भी बिल्कुल सच होगी, और मन ही झूठा है तो सारे एक्सप्रेशंस और सारी वाणी भी झूठ के ही कैडर में चली जाएगी। और उसने कहा कि सुनो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? किसान ने कहा कि मेरी बिटिया की शादी की चिंता मुझे है, मेरे पास तो पैसा खाने तक को नहीं है, मैं क्या करूँ? शेर ने कहा, आओ मेरे साथ। वो उसको गुफा में ले जाता है, वहां पर देखते हैं तो बहुत सारे गहने पड़े हुए हैं सोने के, जितना चाहिए तुम्हें उठा लो। किसान बहुत खुश और जेवरात ले जा करके, और बड़े ठाट बाट से उसने प्लान किया, प्रोग्राम किया कि अब बिटिया की शादी करेंगे, और शेर से भी कहा कि भाई तुम मेरे हितैषी हो, तुम भी आना शादी में। तो शेर भी पहुंचता है शादी में, शाम को पहुंच जाता है वो, और एक किनारे वहां खड़ा हो जाता है, लोग भयभीत होते हैं उससे। जब लोग भयभीत होने लगते हैं तो किसान तो अपने काम में व्यस्त था, किसान की जीवन साथी लोगों से बोलती, अरे इससे क्या डरना है, ये शेर थोड़ी है तो गधा है, गधा खड़े रहे। ऐसा कह दिया, बस इतनी सी बात से चुपचाप बिना शादी अटेंड किए वापस चला गया। हाँ, ऐसे ही अपन तो ऐसी तरह समझ में आना चाहिए अपने को, और क्या। तो दो तीन दिन के बाद किसान जब जंगल में पहुंचा और कहा कि तुम आए भी और कुछ भी देखे बिना, आशीर्वाद दिए बिना और चले गए, तो उसने कहा कि सुनो, ये जो कुल्हाड़ी लकड़ी काटने के लिए लाए हो, मेरे सिर पर जोर से मारो। उसने कहा, क्या करते हो तुम, हमारे मित्र हो, तुम्हारे सिर पर कुल्हाड़ी मारे, इतने कृतज्ञ तो हम नहीं है। उसने कहा, मारते हो कि नहीं मारते, वरना तुम्हें आज समाप्त कर दूंगा। अब तो किसान बहुत घबराया, उसने बेमन से बहुत मुश्किल में उसके माथे पर कुल्हाड़ी से वार किया, फट गया माथा, खून निकलने लगा। शेर ने कहा, वापिस लौट जाओ। किसान वापिस लौट गया, बस इतना ध्यान रखना 10-15 दिन में एक बार आकर के मुझे देख जाना। 10-15 दिन के बाद बहुत डरते डरते हाथ जोड़े किसान शेर के सामने आया। उसने शेर ने कहा कि देखो इधर के घाव का क्या हुआ, वो तो मिट गया था। बोले, ये घाव तो मिट गया, लेकिन एक घाव अभी मेरे मन में बहुत गहरा है। क्या हुआ? मैं तुम्हारे घर पहुंचा था और मैं तो चुपचाप खड़ा हुआ था वहां पर, लोग मेरे से डर रहे थे, तब तुम्हारी जीवन साथी ने कहा था कि इससे डरने की कोई बात नहीं है, शेर वेर नहीं है तो गधा। वो बात आज भी तकलीफ पहुंचाती है, ये जो शरीर पर पड़ा हुआ घाव तो मिट गया, लेकिन मन को लगा हुआ घाव नहीं मिटा। इसलिए बहुत जरूरी है
बहुत जरूरी है मेरी बात को कृपा करके तालियों के शोर में उड़ा देंगे। हाँ, इससे भी लोग इस बात का वो लगाते हैं कि कितनी बम है इनकी वाणी में, जितनी बार ताली बनी उतनी बढ़िया दमखम है। कृपा करके इससे मुझे बचाए रखें। ये तालियों का शोर, ये प्रशंसा का शोर व्यक्ति को सच्चाई से विमुख करने में बहुत कारण बन जाता है। हाँ, क्योंकि दो ही चीजें तो हैं, सत्ता और संपत्ति, जो आदमी को सच से विमुख कर देती। एक बार उसको ये लगने लगे कि मैं बहुत बलवान हूं, मेरे साथ पूरा हुजूम है, तो मानिएगा फिर वो झूठा होकर के भी अपने को सच साबित करे। और पैसा अगर आ जाए, सत्ता और संपत्ति दोनों ही व्यक्ति को विमुख करती हैं, बहुत संभाल करके जीवन को चलाने की आवश्यकता। कई बार ऐसा लगने लगता है मुझे कि तालियों के शोरगुल में और मेरे अंदर ऐसा ना लगने लगे कि वाह पास हो गए बच्चू, अब तो बढ़िया बोलने लगे, तो बढ़िया बोलने लगे, तालियां पिट रही हैं, हर दो दो मिनट में पिट रही हैं तालियां, तो ऐसा लगने लगता। कई बार मैं अपने मन की बात आपसे कह लेता हूं, अब आप हमारे अपने हैं तो फिर कहने में कोई संकोच भी नहीं होता है। अपन को कदम कदम पर संभालना है अपने को, और कुछ भी नहीं, इतना ही मेरा आशय है। मैं उन ताली बजाने वाले को दुख पहुंचाने वाली भाषा नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो आप समझे कि मुझे दुख पहुंच गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बात इन चीजों को बहुत सीरियसली अपन इन चीजों को समझे। वाणी बहुत सोच करके बोलनी चाहिए, इस उदाहरण से अपन ने ये सीखा। और आचार्यों ने और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए लिखा है कि सत्यम बन प्रियम बन, सच बोलो प्रिय बोलो, अप्रिय सच मत, अप्रिय और असत्य तो बोलो ही मत, लेकिन प्रिय बोलो और सच बोलो, झूठ भी प्रिय हो तो मत बोलो और सच भी अप्रिय हो तो भी मत बोलो, दोनों कंडीशन रखो। तो एक इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है, वैसे तो उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन अपनों को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण दे लें। एक राजा साहब को अपना चित्र बनवाना, क्या हुआ? एक राजा साहब थे तो उनको अपना चित्र बनवाना, तो बहुत सारे कलाकार बुलाए। अब सारे कलाकार, राजा साहब का चित्र तो सुंदर ही बनना चाहिए, और राजा साहब के साथ मुश्किल ये थी कि उनकी एक आंख नहीं थी। अब राजा साहब का वो सुंदर चित्र और अगर सच्ची सच्ची बनाते हैं तो सुंदर नहीं बनेगा, एक आंख नहीं बनाएंगे फिर। तो जो पहले वाला था उसने कहा कि इससे कोई मतलब नहीं, जो सच है वो ही बनाएंगे भैया अपन। तो उसने राजा साहब की एक आंख नहीं बनाई और बाकी तो सब सुंदर है शरीर। राजा साहब को पसंद नहीं आया। दूसरा वाला चित्र दूसरे कलाकार ने सोचा कि अरे वह सुंदर चित्र बनना चाहिए, सच से क्या मतलब। उसने राजा की दोनों आंखें दुरुस्त एकदम बढ़िया बढ़िया बना दी। राजा ने कहा कि झूठा चित्र, सुंदर तो है प्रिय मालूम पड़ता है लेकिन झूठा, वो अप्रिय मालूम पड़ रहा था लेकिन सच्चा था। दोनों रिजेक्ट हो गए, सच जो अप्रिय है वो भी ठीक नहीं है और झूठ जो कि प्रिय है वो भी ठीक नहीं है। तीसरे कलाकार ने बनाया, क्या चित्र बनाया उसने? राजा साहब बहुत शूरवीर हैं, बलवान हैं और बहुत तीरंदाज भी हैं, वो हाथ में धनुष बाण लिए हैं और चला रहे हैं और एक आंख तो बंद रहती है, एक आंख बंद है और चित्र बना हुआ है, वो चित्र पास हो गया क्योंकि सच भी है और प्रिय। आप और हम सब समझ रहे हैं इस चीज को, हमें किस तरह से सच भी है और प्रिय भी है, इस बात का ध्यान रख करके कि सत्यम बद प्रियम अप्रियम सत्यम न बद प्रियम असत्यम अपि न बद असत्यम अप्रियम कदाचित अपि कभी भी नहीं। इतनी अगर अपन थोड़ी सी सावधानी रख करके और अपने वचनों का प्रयोग करें तो कोई वजह नहीं है कि अपने जीवन को हम ऊंचा ना उठा सकें। कदम कदम पर झूठ बोलने के अवसर आते हैं, काहे को बोलना पड़ती झूठ भैया? झूठ का सहारा क्यों लेना पड़ता है? थोड़ा सा सम्मान पाने के लिए, या कि थोड़े दो पैसे की बरकत हो जाए इसके लिए। और कहे के संसार में क्यों व्यक्ति को झूठ बोलना पड़ता है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए बोलना पड़ता है, कभी कभी भय से बोलना पड़ता है झूठ। लेकिन ये दिन दिन भर में एक मौका तो ऐसा अपन लाए कि जब अपने मुंह से किसी के प्रति झूठ निकल गया है तो शाम होने से पहले हम कन्फेस करें उसके सामने जाकर के, क्या इतना साहस है कि कह सके कि वो जो सुबह हमने आपसे कहा था वो सच नहीं था, वो झूठ था। दिन भर में अगर बोले गए 100 झूठ में से भी एक झूठ को कोई कन्फेस कर ले, दावा तो नहीं करता लेकिन कहता जरूर हूं कि धीरे धीरे जीवन सच्चा होना शुरू हो। बड़ा छोटा सा एक सूत्र है, हमसे झूठ निकल
मंगल कर जो चीजें छोड़ी जा सकती थी वो तो त्याग के समय त्याग धर्म जब घटित हुआ तो छोड़ दी, 10 प्रकार का परिग्रह छोड़ दिया। अब कह रहे हैं कि अपने शरीर के प्रति भी ममत्व छोड़ देने का नाम आत्मसंयम। इतनी निष्प्रहता जीवन में जब घटित होती है तब आत्मसंयम होता है। बनारस की दास जी के जीवन की घटना प्रसिद्ध है कि उनके यहाँ पर चोर चोरी करने घुसे थे और सामान की पोटली बना करके जब ले जाने लगे तो भारी हो जाने से उनसे उठी नहीं थी। तब मदद के लिए आसपास और उस चोर ने कोशिश की कि कोई पोटली उठा देवे, तो खुद बनारस की दास ने पोटली उठाकर उसके सिर पर रख दी। अंधेरे में वो नहीं समझ पाया कि जिसके यहाँ मैंने चोरी की है वही घर का मालिक मुझे पोटली उठाने में मदद करता। वो तो जब घर पहुँचा तो सामान देख करके उसकी माँ ने कहा कि किसके यहाँ से चोरी करके लाए। उन बनारसी दास के जो कि अत्यंत निष्प्रभ, जो वस्तुएं होते हुए भी उनके प्रति ममत्व नहीं रखते, उनके यहाँ से लेकर के आए, जाओ तुम्हें ये संपदा फलेगी नहीं, वापस लौटा दो। और जब वापस लौटाने आए तब उन्होंने क्या जवाब दिया कि भाई मैंने तो वैसे भी अपने पास आवश्यकता की ही चीज़ें सीमित करके रखी थी, मैंने वैसे भी परिग्रह को छोड़ दिया था। कल जब तुम पोटली उठा के ले जा रहे थे तभी मैंने विचार कर लिया था कि यह भी अब मेरा नहीं है और अब मैं उसे कैसे फिर से ग्रहण कर लूँ। मैं तो कल सब पदार्थों का जो तुम ले गए उनका मैं त्याग ही कर चुका हूँ, उनके प्रति ममत्व छोड़ चुका हूँ। एक गृहस्थ के जीवन का ये उदाहरण, एक गृहस्थ भी इस तरह से अपने पास रखे हुए परिग्रह के प्रति निष्ठा और ममत्व से रहित हो सकता है। वास्तव में ये अकिंचन धर्म की सिर्फ भूमिका है। अकिंचन धर्म तो अकिंचन का जो भाव है वो तो जिसने सर्व परिग्रह का त्याग कर दिया, 5 महाव्रतों को अंगीकार करने वाले मुनि जनों के जीवन में घटित होता है। वो एकाकीपन है, वो अकेलापन है। अकेलापन जरा मुश्किल वाला काम है। अपन लोग अकेलेपन का अनुभव तो करते हैं, जब किसी प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाता है तब उसके राग के वशीभूत होकर के अपन अकेलेपन का अनुभव करते हैं। या कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनसे हमारा मेल नहीं बैठता है तब भी हम अकेलेपन का अनुभव करते हैं कि इतने सब लोगों के होते हुए भी मेरा कोई तो नहीं है, तब भी एक अकेलेपन का वो द्वेषपूर्ण है। एक तो ये कि मेरा प्रियजन जो मेरा हितैषी है, मेरा सहयोगी, उसके वियोग होने पर जो राग जनित अकेलेपन की पीड़ा होती है वो भी अकेलापन है। और जब किसी से हमारी बनती नहीं है तब हम कहते कि भैया देख लिया कोई अपना नहीं है, यह देश जनित एकाकीपन है। लेकिन ऐसे राग देश जनित एकाकीपन का नाम अकिंचन नहीं है। और ना ही जिसके पास कुछ नहीं है वो भी तो गरीब, जिसके पास कोई ढीला नहीं है वो भी अकिंचन, क्योंकि वो भी अकिंचन नहीं है। अकिंचन तो वास्तव में वो है जो तेरे मेरे पन के भाव से ऊपर उठ गया है, जो अपने आप में संतुष्ट है, जिसे किसी के सद्भाव और अभाव में कोई सुख दुख और हर्ष विषाद नहीं होता है, वो अवस्था का नाम अकिंचन। उस भाव का नाम अकिंचन है। अवस्था तो अकिंचन की है और भाव अकिंचन। इस तरह ये अकिंचन है। हमें इस अकिंचन धर्म की साधना करने के लिए और करना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने गृहस्थ के लिए भी अकिंचन की साधना करने के लिए यही कहा कि वो अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश, इनके बीच रहकर के भी अकिंचन धर्म का पालन कर सकता है क्या? अब हमको तो ऐसा लगता है कि परिवार, समाज और देश सबको छोड़ देना अकेले हो जाने का नाम असिंचन है। इसका जो दूसरा रूप है वो भी अपन को समझना चाहिए। असिंचन के मायने हैं एक ऐसी भाव दशा जिसमें कि हम अपने सुख दुख का अपने आप को ही कारण मानते हैं, हम अपनी ही जिम्मेदारी मानते हैं कि मेरे सुख दुख के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, मैं ही हूँ। और वास्तव में देखा जाए तो अपना सुख दुख सबको अकेले ही भोगना पड़ता है। कोई कितना भी अपना हो, हम जिसे अपना मानते हैं वह भी हमारे दुख में हमारे दुख को घटा नहीं सकता, वो तो सिर्फ दुख में एक आश्वासन देता है कि हम आपके साथ हैं। लेकिन दुख तो व्यक्ति जिसके ऊपर आता है उसे ही झेलना पड़ता है। सुख की स्थिति में भी चार लोग हमारे सुख में शामिल हो जाते हैं, लेकिन सुख का अनुभव तो जिसको हो रहा है वो ही करता है। ऐसे अपन देखें तो सुख और दुख दोनों में हम अकेले ही हैं। ऐसा जो भाव है वो गृहस्थ भी अपने जीवन में ला सकता, इससे फायदा ये होता है कि फिर दूसरे से शिकायत नहीं है। और नहीं तो अपने ऊपर कोई दुख आता है तो अपन बाहर देखते हैं कि देखो इनमें ऐसो न करो, हो तो हमें दुख नहीं आतो, यदि ऐसो कर देते तो हमारा दुख कम हो जाते। नहीं, वो तो मेरे अपने असाता कर्म के उदय से मेरे जीवन में दुख आया है और कोई दूसरा तो उसमें निमित्त है। मैं अपने कर्मों को जिम्मेदारी स्वयं लेऊं, दूसरे को क्यों दोषी ठहराऊं, दूसरे से क्यों शिकायत करूं? ऐसा भाव अगर मन में आता है तो ये भूमि का ये क्रम क्रम से हमें उस आचिंचन भाव की तरफ ले जाएगी। आचिंचन धर्म हमारे जीवन में उसका स्वाद आना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जो अपने सुख दुख की जिम्मेदारी स्वयं मानता है वो परिवार में प्रसन्नता पूर्वक रहेगा, समाज के बीच भी प्रसन्नता पूर्वक रहेगा, देश के बीच भी प्रसन्नता पूर्वक रहेगा, इन सबके बीच रह करके भी। और वो प्रसन्नता पूर्वक सबका सहयोग करेगा लेकिन दूसरे से सहयोग की अपेक्षा नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे से सहयोग की अपेक्षा रखना ही और पीड़ा का कारण है। वहीं पराधीनता आती है, वहीं सुख और दुख में अगर दूसरे ने सहयोग दे दिया तो देखो मुझे कितने लोग सहयोग देते, अहंकार आ गया। और दूसरे ने सहयोग नहीं दिया, अरे मेरा तो कोई सहाई नहीं है, लोग संकलित हो गए। क्योंकि अहंकार और संकलित दोनों ही संसार बढ़ाने वाले हैं, इसलिए तैयार रहना हमेशा दूसरे की मदद के लिए और दूसरे के मदद लेने के लिए कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसे स्वावलंबी जीवन की शुरुआत है आचिंचन धर्म। परिवार, देश और समाज के बीच भी स्वावलंबी होकर के अगर कोई जीना शुरू करता है तो धीरे धीरे करके और फिर उसके अंदर निष्पहता और ममत रह की स्थिति बनना शुरू होती, वो आचिंचन धर्म की शुरुआत है। मिथिला नरेश के बारे में एक घटना प्रसिद्ध है। एक बार उनको दाह ज्वर हो गया, ज्वर में वैसे भी दाह होती है, और दाह ज्वर में तो और अत्यंत दाह होती है। सब प्रकार के शीतलता के उपाय करने पर भी उनके दाह में कमी हुई। अब क्या करें, सब खड़े हुए हैं, हाथ बांधे हुए, क्या वैद्य क्या हकीम। किसी ने सलाह दी कि भाई इतनी पीड़ा है, अब तो एक ही उपाय है कि मलयागिर का चंदन मंगाया जाए और जिसे घिस करके और सारे शरीर पर और हर आधे घंटे में और लेप किया, इतनी मात्रा में मलयागिर का चंदन घिसना चाहिए। उनके सैकड़ों रानियां थी, सब ने कहा ये कार्य कोई और क्यों करे, हम ही सब मिल करके इस कार्य को करें। और सब ने जो है चंदन आ गया घिसना शुरू। लेकिन चंदन घिसते समय और बहुत तेज आवाज होने लगी, क्योंकि रानी महारानी लोग चंदन दिखती हैं, उनके हाथ में जो पहने हुई चूड़ियां हैं वो बहुत तेज आवाज करें। महाराज को और संकलेश हो, अरे भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि आपके लिए चंदन भेजा जा रहा है, लेकिन इससे तो मुझे और विकल्प हो रहा, बहुत आतुरता हो रही, इतना तेज शोरगुल हो रहा। जाकर के मंत्रियों ने रानी साहबा को कहा कि राजा को ये तेज आवाज भी कष्टकारी जान पड़ती है, कुछ उपाय है। उन्होंने कहा आप जाएं, हम उपाय करें। और थोड़ी देर के बाद ही 5 मिनट में और आवाज आनी बंद हो गई। राजा के मन में फिर विकल्प आया, क्या मेरे लिए जो चंदन घिसा जा रहा था क्या वो घिसना बंद हो गया, क्यों आवाज आना बंद हो गई? तो पूछा मंत्री से कि क्या चंदन घिसना बंद कर दिया गया क्या? क्योंकि नहीं राजन, चंदन तो अभी भी घिसा जा रहा है, तो फिर आवाज क्यों नहीं आ रही, क्या सब लोग बहुत दूर कहीं चले गए? क्योंकि वहीं जहां अभी घिसा जा रहा था वहीं पर, तो आवाज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आवाज आने का कारण रानी साहबा के हाथों में पहनी हुई चूड़ियां थी, तो क्या उन्होंने मेरे रहते हुए चूड़ियां उतार दी? कितने विकल्प संसार के इन संकल्प विकल्पों में और सारा संसार। लेकिन अगले क्षण जैसे ही मंत्रियों ने कहा कि नहीं महाराज, उन्होंने अभी भी अपने हाथ में चूड़ियां धारण कर रखी हैं, लेकिन पहले 10-25 चूड़ियां एक एक हाथ में थी, अब एक एक चूड़ी है मात्र और ये चंदन दिखने। अच्छा, एक एक होने से अब आवाज नहीं आ रही, ये टकराहट बहुत होने से होती है, एकाकी होने से नहीं होती है। ये बात राजा के दिल में आ गई, अगर मैं इस दाह ज्वर से कल सुबह तक ठीक हो गया तो सुबह सूरज की रोशनी के साथ ही और एकाकी जीवन व्यतीत करूंगा, समस्त परिचय का और राज वैभव का त्याग करके मैं मुनि बन करके और आसन से धर्म से। और कहते हैं कि कितनी देर होगा असाता का उदय, असाता के उदय में और जो हम दुख कर लेते हैं वो हमारी असाता को बढ़ाता है, और अगर विशुद्धि बढ़ जावे तो वो असाता कर्म भी हट जाता है। और राजा के उस विशुद्धि बढ़ने से कि अगर मेरा दाह जर ठीक हो गया तो मैं मुनि बनकर के एकाकी विचरण करूंगा, और पुण्य का और विशुद्धि का ऐसा संचय हुआ कि सुबह तक रोग अपने आप ही शांत हो गया। सुबह सबसे क्षमा मांग करके और सबके प्रति अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर के, ऐसा नहीं कि कोई संकलेश पूर्वक, सबसे क्षमा मांग कर सबको क्षमा करके और वे उस धर्म के पालन के लिए एकाकी निकल। भाई ये तो घटना है, ऐसा अपने जीवन में भी अपन घटित होते देखते हैं। कई कई बार इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होती अपने जीवन में, लेकिन अपन ऐसा कोई निर्णय नहीं। जब अपने जीवन में सुख दुख के अवसर आते हैं और अपन समझते हैं कि सुख दुख के अवसर कैसे आ रहे हैं, मेरे अपने ममत्व की वजह से, शरीर से जितना मेरा ममत्व है तो शरीर के सुख की सामग्री मिल जाने पर मैं सुखी हो जाता हूँ, और शरीर के प्रति ममत होने से उसके योग्य सुख की सामग्री न मिलने से मैं व्यथित हो जाता हूँ, या मेरे मन के अनुकूल मिलने पर मैं सुखी हो जाता हूँ, मन के प्रतिकूल अवस्था आने पर मैं दुखी हो जाता हूँ। अरे इस तरह से जो है मेरा जीवन इस ममत्व की वजह से सुख और दुख का अनुभव करता है। मैं कोशिश करूँ कि ममत्व भाव को अपने शरीर के प्रति और पर वस्तुओं के प्रति ममत्व के भाव को घटाकर चला जाऊँ तो मेरा जीवन आसानी से सुखी हो सकता है। ऐसा भाव अगर अपने मन में धीरे धीरे करके और आने लगे तो हम आचिंतन धर्म का पालन करके और स्वयं ही सुखी हो सकते हैं। ये एक तरह की आचरण हो जाने की अवस्था है। अभी तो अपन सहारा ढूंढते हैं अपना जीवन जीने के लिए, चीज़ें सहारा बन जाती, धन पैसा सहारा बन जाता, हमारे अपने जो संबंधी हैं ये सहारा बन जाते, ये हमारा शरीर भी हमें लगता है कि हमारा सहारा हो जाए। इन सबको हम शरण मान लेते, इन सबको हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए मददगार मान लेते, बस यही जो है हमारी अपनी अज्ञानता कह दीजिएगा, हमारी अपनी कमी कह दीजिएगा, इतनी ही है। इसको जो जितनी साधना के द्वारा घटा ले गए उसके जीवन में अचिंतन आ जाता है। हमें अब अपने जीवन में दूसरे से कम हम अपेक्षाएं रखें तो भी हमारे जीवन में अचिंतन धर्म घटित हो। आखिरी बात मैं किसी ही और बात आपसे करूँगा, क्योंकि आचिंतन और ब्रह्म स्वरूप ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि जो जीवन में अनुभव करने की हैं उन पर जितना भी विचार करते हैं तो विचार अधूरा मालूम पड़ता कि क्या है इसमें रखा हुआ। इसकी व्याख्याएं तो कितनी की जाए वो कम की हैं, वो तो सिर्फ जीवन में घटित होने वाली अवस्था विशेष है। ऐसी स्थिति निर्मित हो जाना कि त्याग का भी अहंकार नहीं रहा, मैं इसमें छोड़ा पर पदार्थ हूं कि अरे ये मेरे थे ही नहीं, इसके छोड़ने का अहंकार भी नहीं। ऐसी आचिंतन की अवस्था है और जो पर पदार्थ जिनको कि मैं अपना मददगार या सहयोगी मानता हूं उनको अब धीरे धीरे करके और उनके प्रति ममत्व भाव को घटाने लगूं तो मेरे जीवन में आचिंतन आएगा। इसकी भी एक छोटी सी घटना है। हमें जो है शरण किन चीज़ों में ढूंढनी चाहिए, सहारा किन चीज़ों का लेना चाहिए, किन चीज़ों में हमें अनुराग रखना चाहिए, किन से हमें निर्ममत होना चाहिए, ये थोड़ा सा विवेक याद रखेगा। और कोई विशेष इसमें बात नहीं है। इसके लिए वो छोटा सा उदाहरण आपको दूँ, शायद बात जो है समझ में आए। हर बार मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को कम से कम आसन करने के बारे में और ठीक से नहीं कह पाता, तो अभी भी मैं मुझे लग रहा है कि आसन करने के बारे में क्या कहें। उस भाव दशा की स्थिति की कल्पना अपन कर लेवे कि क्या स्थिति बनती होगी। अपन को तो एकाकीपन का एक ही अनुभव है कि कोई हमारा सहयोगी नहीं है, इस बात की पीड़ा में हम एकाकीपन महसूस करते या कि कोई हमारा सहयोगी था और अब हम उसे दूर चला गया, तब हम एकाकीपन इतने अनुभव है हमें। लेकिन राग द्वेष की रहस्य जो विराग अवस्था है उसके एकाकीपन का अनुभव बहुत दुर्लभ है कहना चाहिए, पर फिर भी उसकी प्राप्ति के लिए अपन पुरुषार्थ करें और स्वावलंबी होकर के जीवन जिए, दूसरे के सहारे की अपेक्षा ज़्यादा न रखें, तो हो सकता है कि हमें उस तरह की अनुभूति हो। एक राजा थे, उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे साधु के पास जाकर बोले कि मैं भी आपके जैसा ही अपना जीवन एकाकी व्यतीत करना चाहता हूँ। अब इनके पीछे पीछे तो उनके मंत्री भी गए थे और भी भीड़ भाड़ गई थी। राजा साहब जा रहे हैं साधु जी के पास, तो सब थे उनके पास। तो साधु जी ने कहा कि भाई अकेले होकर के आना, तुम अकेले होकर साधना करना चाहते तो इतने फौज फटाखे का लेकर के क्यों आए अकेले आए। उन्होंने कहा ठीक है, अगली बार सबके साथ तो लौट गए। मंत्री वगैरह के साथ फिर सबसे कहा कि देखो अब हम जाते हैं, कोई हमारे साथ नहीं आना, हम अब एकाकी होकर जाएंगे। अभी काफी हो के पहुंचे तो जैसे वो पहुंचे अंदर तो साधु जी बोले कि अरे मैंने तुमसे कहा ऐसा कि भीड़ लेकर के मत आना, अकेले आना, और तुम इतनी भीड़ लेके आ रहे हो। तो बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई मैंने तो मंत्री से सेना की सब बातें थी, लेकिन अब तो मैं अकेला आ रहा हूँ, कह रहे तो भीड़ लेके आ रहे। क्योंकि राजन अपने मन में झांक करके देखो, अभी भी तुम अपने आप को राजा ही मान करके भीतर प्रवेश कर रहे हो। तुम्हारा वैभव, तुम्हारे मंत्री, ये सब अभी तुम्हारे साथ मन में तो बन रहे हैं, उनसे भी मुक्त होकर के आओ। अब की बड़ी कठिन बात है, बाहर से परिचय छोड़ देना तो ज्यादा कठिन नहीं है भैया, भीतर से उसके प्रति ममत्व भाव टूटना भारी कठिन है। जिंदगी लग जाती है ममत्व भाव टूटने। अब राजा चकित की बात तो सही है, सारी भीड़ तो मैं पीछे छोड़ा है, लेकिन विचारों की भीड़ तो मेरे मन में अभी भी है, उनसे सबसे लगाव मत भाव तो अभी भी मेरा है। राजा जी है चिक्ता वापस लौट गए और कुछ दिन के बाद सबके प्रति और उनके मन में जो थोड़ा बहुत लगाव था वो भी धीरे धीरे शांत करके फिर आए। अब की बार आए तो जैसे ही उन साधु के दरवाजे पर आए, साधु उनको देख करके और फौरन बोले, यहाँ तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है और दरवाजे नहीं है। अरे भाई, पहली बार ऐसे ऐसे लौटा दिया, दूसरी बार कहा कि काकी हो के आना, हम भी काकी हो करके आए और फिर आपको बिल्कुल दुत्कार करके बाहर कर दिया और दरवाजे बंद कर दिए। हमने जिन साधु के लिए अपना राजपाट छोड़ा, उस राजपाट से ममत्व छोड़ा, जिनका हमने सहारा लेना चाहा, उनने हमें दुत्कार करके वो बाहर कर दिए, दरवाजे बंद कर दिए। अब क्या करें, वापिस तो लौटा नहीं जा। निश्चय होकर के आए थे, लेकिन निश्चयता की आखिरी परीक्षा और निर्ममत होकर के आए थे, लेकिन उस ममत की आखिरी परीक्षा और। अब सारी रात दरवाजा बंद है और राजा होने के बावजूद भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह उस साधु की कुटिया के बाहर टिके हुए बैठे हुए हैं, विचार कर। देख लिया मैंने संसार की वास्तविकता को, कोई भी अब मेरा नहीं है, जो करना है वो मुझे ही करना। धीरे धीरे करके और अपने स्वावलंबी और स्वाधीन होने का भाव भी कराने, सबको छोड़ा मैंने, किसके लिए छोड़ा, यहाँ गुरु के चरणों में, साधु के चरणों में शरण मिल जाएगी, यहाँ से मुझे वापस कर दिया गया, इसका मतलब अब शरण मुझे अपने भीतर ही खोजनी पड़े। ये सब मेरे लिए कारण बन सकते हैं, लेकिन कार्य तो मुझे स्वयं करना पड़े। बाबा जी ने मेरे साथ ये बहुत अच्छा किया, जो थोड़ी देर पहले ये भाव आ रहा था कि सब कुछ छोड़कर इनके पास आया और इन्होंने भी मुझे जगह नहीं दी, अब कह रहे उन्होंने ठीक किया, मैं इनके ऊपर निर्भर हो जाता, उन्होंने मुझे दुत्कार कर बाहर करके आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दे दी, अत्यंत प्रसन्न हो गए। रात जो है अत्यंत प्रसन्नता से गुजरी और सुबह सुबह और कोई भजन गा रहे हैं बाहर बैठे हुए राजा, और वो साधु बाबा जी दरवाजे खोल कर कुटिया के और राजा को अपने हृदय से लगाकर कहते हैं कि क्षमा करना, आए आप और मेरे साथ उस एकाकी पन की अगर शुरुआत करना चाहें तो मैं आपसे स्वीकार करूँ। यहाँ से शुरुआत होती है, इतनी ऊंचाई पर पहुंच करके और हम चीज का अनुभव करते हैं, जहाँ संसार से आचरण होकर सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण में आए, वह भी मेरे कल्याण में सिर्फ निमित्त बनेगी, लेकिन कल्याण की तैयारी तो मुझे स्वयं करनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे एकाकीपन के भाव से भर करके और हम आत्मचंद धर्म का स्वाद ले सकते हैं। प्रयास करें, धीरे धीरे करके परिग्रह को कम करें, इच्छाओं को कम करें और जो रखता है परिग्रह उसके महत्व भाव को कम करें, दूसरे से अपेक्षा कम की रखें, दूसरे की मदद की तैयारी हमेशा रखें, लेकिन दूसरे से मदद न चाहें, स्वावलंबी बन करके और अपने सुख दुखों एक अकेले सहन करना है तो शांतिपूर्वक सहन करें। इतनी विद्या है भैया सीखने की, जिंदगी लगा दो चाहे आज सीख लो, काम इतना ही करना है और बाकी सब इसी का विस्तार है और कुछ भी नहीं। इसलिए जितना जिससे बने उतना करना चाहिए, इसी भावना के साथ वो भी आचार्य युवा विद्या आचार्य महाराज गुरु।